नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कहा कि भारत फिलीपींस रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों को बढ़ाने पर सहमत। भारत और फिलीपींस ने रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, समुद्री सहयोग, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में 9 समझौता ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर किए। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्यों ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता पर प्रस्ताव पारित किया। IMD ने कल तक केरल और तमिलनाडु के घाट क्षेत्रों में अत्यधिक भारी वर्षा का अनुमान लगाया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में बादल फटने से भारी नुकसान की खबरें। आपदा प्रबंधन दल घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। अब समाचार विस्तार से। भारत और फिलीपींस ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर की उपस्थिति में 9 समझौता ज्ञापनों MOU का आदान प्रदान किया। इन समझौता ज्ञापनों में भारत और फिलीपींस के बीच रणनीतिक साझेदारी, आधिकारिक मामलों में पारस्परिक कानून सहायता संधि, रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि शामिल है। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिलीपींस के राष्ट्रपति की यह यात्रा विशेष महत्व रखती है क्योंकि भारत और फिलीपींस अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है।
हमारा बायोलेटरल ट्रेड निरंतर बढ़ रहा है और $3 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। इसे और मजबूत करने के लिए इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिव्यू को जल्द से जल्द पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। साथ ही हमने द्विपक्षीय प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में काम करने का फैसला भी किया है।
प्रधानमंत्री ने आगे कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध प्राचीन काल से हैं। उन्होंने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े होने के लिए फिलीपींस सरकार और राष्ट्रपति का आभार भी व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि विकास साझेदारी के तहत भारत फिलीपींस में त्वरित प्रभाव परियोजना की संख्या बढ़ाएगा। उन्होंने कहा है कि भारत फिलीपींस में सॉवरेन डेटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भी सहयोग करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर के बीच द्विपक्षीय वार्ता नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और फिलीपींस सभ्यता, ऐतिहासिक और लोगों के बीच आपसी संबंधों की नींव पर आधारित घनिष्ठ संबंध साझा करते हैं। बिहार में आयोजित विशेष गहन पुनरीक्षण अभ्यास के मुद्दे पर विपक्षी दलों के हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी दल SIR समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे थे। जब सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस, DMK, TMC और अन्य विपक्षी दल नारेबाजी करते हुए आसन के समक्ष आ गए। हंगामे के बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया। हालांकि शोर शराबे जारी रहने और अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी ऐसी ही नजारा देखने को मिला। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दल विशेष गहन पुनरीक्षण अभ्यास पर चर्चा की मांग करने लगे। विपक्षी सांसदों ने सदन के अंदर CISF जवानों की तैनाती का मुद्दा भी उठाया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें विपक्षी दलों की ओर से उपसभापति को एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने सदन के अंदर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के समय CISF जवानों की मौजूदगी पर सवाल उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि यह स्पष्ट है कि सदन में केवल मार्शल ही प्रवेश कर सकते हैं। शोरगुल के बीच सदन के नेता JP नड्डा ने कहा कि सदन की कार्यवाही बाधित करना अलोकतांत्रिक और संसदीय नियमों के विरुद्ध है। उपसभापति हरिवंश ने लगातार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ समय सांसद जानबूझकर सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रश्नकाल और शून्यकाल लोक महत्व के मुद्दे उठाने और सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। शोरगुल के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए भी स्थगित कर दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों के लगातार हंगामे पर नाराजगी व्यक्त की। संसद भवन परिसर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि मानसून अधिवेशन का ये तीसरा सप्ताह है, लेकिन एक भी विधेयक पारित नहीं किया जा सका है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाए जाने संबंधी प्रस्ताव पारित हो चुका है, लेकिन ये अनुमोदन के लिए राज्यसभा में अभी तक लंबित है। श्री रिजिजू ने विपक्षी दलों के सहयोग करने और सदन को चलने देने का आग्रह भी किया। एनडीए संसदीय दल की बैठक आज सुबह नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और एनडीए के अन्य सांसद इसमें शामिल हुए। बैठक के दौरान सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। सांसदों ने सशस्त्र बलों की भूमिका और उनके अधिक समर्पण की सराहना करते हुए ऑपरेशन की सफलता पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पारित किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई।
ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेसफुल हमारा मिलिट्री एक्शन के बाद फिर ऑपरेशन महादेव का जो सक्सेस है उसको लेकर के एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी ने रेजुलेशन पास किया और भारत के सेना को, आर्म फोर्सेस को हमने श्रद्धांजलि दिया, अभिनंदन किया और सराहना करते हुए देश के ओर से हम हमेशा सेना के साथ खड़ा रहेंगे।
केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज कहा है कि कर्तव्य भवन को दिल्ली भर में कार्यरत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाकर दक्षता, नवाचार और सहयोग को बढ़ाने के लिए सोच समझ कर डिजाइन किया गया है। नई दिल्ली में उन्होंने बताया कि अत्याधुनिक कार्यालय परिसर लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर में 2 बेसमेंट और 6 मंजिलों में फैला हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर नवनिर्मित कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे।
कर्तव्य भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का ही एक हिस्सा है। ये भवन प्रशासनिक प्रक्रियाओं और शासन की सुव्यवस्था के उद्देश्य से भविष्य में निर्मित होने वाले केंद्रीय सचिवालय भवनों में पहला है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया है कि कर्तव्य भवन के निर्माण का उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को साथ लाकर दक्षता, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना है। वर्तमान में विभिन्न मंत्रालय और विभाग राजधानी दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित हैं। कर्तव्य भवन आधुनिक कार्यालय परिसर है जो करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि ये भवन प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आधुनिक, कुशल और नागरिक केंद्रित शासन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की प्रमुख उपलब्धि साबित होगा। रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कनकलता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि निरंतर सुधारों और किसान केंद्रित पहलों से कृषि क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये सुधार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्री चौहान ने अपने लेख में कहा कि कृषि न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है बल्कि एक आत्मनिर्भर और मजबूत भारत की नींव भी है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज कहा है कि आधुनिक, समावेशी और कुशल मीडिया तथा मनोरंजन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सूचना तथा जनसंपर्क सचिवों के राष्ट्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। इस बीच सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू ने भी कहा कि भारत में हाल ही में सामग्री निर्माण में तेजी से वृद्धि देखी गई है। मौसम विभाग ने कल तक केरल और तमिलनाडु के घाट क्षेत्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने आज केरल, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर तेज से अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर के जेणामणि ने बताया कि इन राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में बादल फटने से भारी नुकसान की खबरें हैं। आपदा प्रबंधन दल घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जिला प्रशासन, भारतीय सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल के दल प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से उत्तरकाशी के धराली में अचानक आए बाढ़ से संबंधित में बात कर जानकारी प्राप्त की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।